على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو پیج نمبر 653 کے اوپر ہم سے سورہ نبا کی تفسیر میں معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں، تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دوسرا پیراگراف ہے اس کے تقریباً درمیان سے، کہ حضرت نے لکھا تھا کہ یہ جو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس میں کلا کی معنی ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، حرف ردا. مراد یہ ہے کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو جب سامنے آئے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی قیامت کا ہونا، کہ قیامت واقع ہوگی، یہ تو آپ یعنی لاجیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر قیامت نہ ہو، ٹھیک ہے، قیامت کا تصور نہ ہو، قیامت پر ایمان نہ ہو، تو پھر یہ دین جو ہے وہ انتہائی ادھورا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دین کے اندر. تو پھر یہ دین جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی ہم کیوں نیکی کا کام کریں، جبکہ ہمیں تو اس کی جزا ہی نظر نہیں آتی اس دنیا کے اندر. اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی بہت نظر آتی ہے، اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور اتنی تھوڑی سی چیز ملتی ہے اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نیکی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، بھئی اتنا مشکل زور لگا کر کے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور آگے سے کیا مل رہا ہے، الٹا لوگوں کی صلوات میں، جو صلوات تو خیر نہیں استعمال کرنا چاہیے، الٹا لوگوں کی جو ہے وہ لان تان مل رہی ہوتی ہیں، ملامتیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آخرت دین کے اندر شامل نہ ہو تو دین پہ انسان چل نہیں سکتا. تو یہ تو دین کی حد تک بات ہو گئی، لیکن آخرت کا تصور ایسا ہے کہ ایون دینی معاملات سے آگے بڑھ کر کے دنیاوی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک آخرت کے اوپر انسان کا ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، غریب جو ہوتے ہیں وہ پس رہے ہوتے ہیں، امیر جو ہوتے ہیں وہ مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور طاقتور کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو موت کا گھاٹ کے گھاٹ اتارنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان کو یا تو کوئی سزا نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو ایک دفعہ ان کو مار دیا جاتا ہے اور بس. لیکن مارا تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ مار دینا جو ہے وہ تو سزا نہ ہوگی نا ہزاروں انسانوں کو مارنے کی، ٹھیک ہے. تو اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو انسان یہی سوچے گا کہ بھئی یہ کیا یعنی بیکار کی زندگی ہے، یہ تو یہ سارا نظام ہی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں تو وہ پھر بالآخر خدا کے بھی منکر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. خدا کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے خدا کا کیا فائدہ جو کہ ظالم کو سزا ہی نہیں دیتا، جو کہ مظلوم کی مدد ہی نہیں کرتا، جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زلزلے کے اندر ایسے مار دیتا ہے، ایسے اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو وہ چھوٹا بڑا تو نہیں دیکھتا نا کہ جی معصوم بچہ ہے تو اس کے اوپر عمارت نہیں گرنی چاہیے، یہ خالی بڑا بندہ ہے اس کے اوپر عمارت گرنی چاہیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر زیادہ سفر کون کرتے ہیں، عورتیں اور بچے سفر کرتے ہیں آج کل کی جنگوں کے اندر، رائٹ. تو اگر آخرت کے اوپر کا تصور نہ ہو تو پھر انسان جو ہے نا وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ جو کہ انٹلیکچولی چیزوں کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان معاملات کو دیکھ کر کے، تو پھر وہ خدا کے دشمن بن جاتے ہیں. جیسا کہ اس دور اس دنیا کے اندر یہ جتنے عیسائی اور یہودی قسم کے لوگ ہیں نا، یہ اوپر اوپر سے عیسائی یہودی ہوتے ہیں، اصل میں یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین کا، असल में यहूदी और ईसाई नहीं होते, असल में ये एथियस्ट होते हैं, ठीक है ना, असल में एथियस्ट होते हैं। क्यों एथियस्ट होते हैं? इसलिए कि इनके जो अध्ययन हैं ये कयामत का सही तसव्वुर पेश नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इनके अध्ययन गॉड का तसव्वुर तो पेश करते हैं, कयामत का तसव्वुर पेश नहीं करते। तो ये ना फिर कयामत के तसव्वुर के ना होने की वजह से ये गॉड के भी दुश्मन बन जाते हैं, ये गॉड के तसव्वुर के भी खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है ना, क्रिएटर के तसव्वुर के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एथियस्ट हो चुकी है यूरोप की, और अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं, और कोर्स उसी तरीके से दीगर ममालिक में भी ऐसा ही हाल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि इस चीज के अंदर बहस, सवाल और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यानी ये जो कह रहे हैं ना कि हकीकत तब मालूम होगी, तो वो हकीकत की बात कर रहे हैं कि तफसीलात जो है ना क़यामत की, इसको आप बहस मुबाहसा करके उन तफसीलात की हकीकत नहीं समझ सकते, ठीक है ना। वो तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर, अपनी छोटी सी अकल में आप उतनी सारी चीजों को समझ ही नहीं सकते जो कि क़यामत में पेश आने वाली, ठीक है ना। जितनी तफसील आपको कुरान में बता दी गई है, हदीस में बता दी गई है, उससे ज्यादा आप सोच समझ नहीं सकते, उसके ज्यादा का आप इदराक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस जितना बता दिया गया है इसी के ऊपर हमें इक्तफा करना है, और हम बाकी जो तफसीलात हैं वो देख करके ही समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इस जुमले का असल में ये मतलब है, ठीक है। तो इसी वजह से ना जो पिछले क्लास में बात हो रही थी कि जो ये फिलोसफी टाइप के जो मजामीन पढ़ाए जाते हैं हमारे स्कूलों कॉलेजों के अंदर, जिसकी वजह से कि हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं तो उनको दीन के खिलाफ किया जा रहा होता है, दीन से बदजन किया जा रहा होता है, ठीक है। तो अब वो अगर आपसे आकर के कोई सवाल करें कयामत के बारे में, खुदा के बारे में, तो आपको उनको जवाब देना है, आपको उन्हें जवाब देना है, आप उनको शट अप नहीं कर सकते, आप उनको शट अप नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये जो है वो बात करने के लायक की बात नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ऐसे अगर आपने उनको चुप कराने की कोशिश करी तो वो चुप नहीं होंगे, बल्कि वो अपने जवाब जो है ना फिर इंटरनेट से तलाश करेंगे, और इंटरनेट से उनको दीन के खिलाफ बातें मिलेंगी, दीन के हक में बातें उनको मोस्ट लाइकली नहीं मिलेंगी। तो फिर ऐसे बच्चे जो है ना ये फिर कयामत के मुनकिर बन जाएंगे, ऐसे बच्चे फिर खुदा के मुनकिर बन जाएंगे, ठीक है। बल्कि वो आपसे सवाल ना भी करें आकर के, फिर भी आप उनसे डिस्कस करें कि बेटा तुम जिस कॉलेज में जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वहां पर तो ये मजामीन पढ़ाए जाते हैं, तो इन मजमूनों के अंदर जो इस तरह की चीजें आती हैं, तो उनका तुम्हारे पास क्या जवाब है, तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है इन सवालों की जो कि तुम्हारे फिलोसफी के लेक्चरर साहब करते हैं। खुद ही इस डिस्कशन को इनिशिएट करें, अगर बच्चे खुद इनिशिएट नहीं कर रहे ना तो आप इनिशिएट करें बच्चों के साथ, आप उनसे डिस्कस करें इन मौजूदात को, ठीक है। क्योंकि जनरेशन गैप होता है, तो इस जनरेशन गैप की वजह से या हमारा मिजाज जरा खराब होता है, तो इस हमारे मिजाज की खराबी की वजह से बच्चे हमें अवॉइड कर रहे होते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो भाई अगर वो बात नहीं कर रहे तो अब आप उनको छोड़ तो नहीं सकते कि जाओ जाके काफिर हो जाओ, जाकर के मुल्हिद हो जाओ, राइट। तो खुद इनिशिएट करें इन डिस्कशन को, ओके। ईमान का मसला है ये, क्योंकि छोटा मोटा मसला नहीं है कि जी किसी छोटे मोटे गुनाह में मुब्तला हो गए, ईमान चला जाता है सिरे से, ईमान खत्म, काफिर हो जाता है बच्चा, ठीक है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि फिर फरमाया कि इसकी हकीकत खुद उन लोगों पर अनकरीब वाज़े हो जाएगी, यानी मरने के बाद उनको दूसरे आलम की चीजों का इंकशाफ होगा और वहां के हौलनाक मनाजिर को आंखों से देख लेंगे, उस वक्त हकीकत खुल जाएगी। इसके बाद हफ्ताला ने अपने कुदरत कामिला और हिकमत व सनअत के चंद मनाजिर का जिक्र फरमाया है, जिनसे वाज हो जाता है कि हफ्ताला की कुदरत कामिला से ये कोई बईद नहीं है कि वो इस सारे आलम को एक मरतबा फिना करके दोबारा फिर वैसे ही पैदा कर दे। भाई इस जो अभी आलम है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें कैसे मामला चलते हैं, तो आपके सामने ये बात खुल जाएगी कि भाई जो परवरदिगार ऐसी चीजों को बना सकता है तो उसके लिए क्या मुश्किल है। आखरत का मंजर तो आसान है, अगर आप कंपेयर करें इस दुनिया के मामलात को आखरत के मामलात से, तो आखरत का मामला तो बड़ा सिंपलिस्टिक है, राइट। वहां तो बस खड़े होना है और हिसाब किताब देना है, वहां पे कोई खाना पे थोड़ी खिलाना है इंसानों को अल्लाह ताला ने, हैं देंगे थोड़ी, देंगे तो नहीं चढ़ेंगे ना आखिरत के दिन, जी इतने सारे लोगों को जिनको खड़ा किया, उनको खाना भी खिलाना है, पानी भी पिलाना है, राइट, उनके जो है वो रहने सहने का इंतजाम भी करना है। तो आखिरत तो आसान हुई ना अल्लाह ताला के लिए, दुनिया ज्यादा मुश्किल हुई ना, कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ये सारे इंतजाम करते हैं, हर मखलूक को उसका रिस्क पहुंचाते हैं, चाहे वो कितनी ही गहराई के अंदर क्यों ना हो, पत्थर के अंदर भी मौजूद हो तो उसको भी रिस्क पहुंचाते हैं। आखिरत में तो ये सारे काम नहीं करने अल्लाह ताला को, तो ज्यादा आसान क्या हुई अल्लाह ताला के लिए, ये दुनिया ज्यादा आसान हुई कि आखिरत ज्यादा आसान हुई? आखिरत ज्यादा आसान हुई ना कंपेयर टू दिस दुनिया, ठीक है। तो इस दुनिया के बारे में अगर हम गौर फिक्र कर लें तो आखिरत का मामला समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला कितना आसानी से आखिरत में सबको दोबारा पैदा कर देंगे। इसमें जमीन और इसके पहाड़ों की तखलीक, फिर इंसान की तखलीक मर्द और औरत के जोड़े की सूरत में बनाई, बयान फरमाई, फिर इंसान की राहत और सेहत और कारोबार के लिए साजगार हालात पैदा करने का जिक्र फरमाया। इसमें एक ये इरशाद है, जअलना नौमकुम सुबाता, ठीक है, सुबात ये शब्द से मुश्तक है जिसके मानी मूंढने और कता करने के हैं, ठीक है। सुबात का जो लफ्ज है उसका जो मस्दर है वो है सब्त, ठीक है, जिसके मानी मूंढने यानी ट्रिम करना किसी चीज को, या कता कर देना, काट देना। तो नींद को हक ताला ने ऐसी चीज बनाया है कि वो इंसान के तमाम हुमूम, यानी हुमूम का मतलब भी गम ही होता है, हुमूम गुमूम, ठीक है। तो अब ये एक टर्म बन गई, तो हुमूम और गुमूम और अफकार को पता करके उसके कल्ब को, दिमाग को ऐसी राहत देती है कि दुनिया की कोई राहत उसका बदल नहीं हो सकती। इसीलिए सुबात का तर्जुमा बाज़ हज़रात ने राहत से भी किया है, ठीक है ना, वरना असल तर्जुमा इसका राहत नहीं है, बल्कि असल तर्जुमा है कता कर देने वाला और मूंग देने वाला। और यहाँ पे मुराद किस चीज को कता कर देना, इंसान के गमों को कता कर देना। इसी वजह से आप लोग जानते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन में मुबतला होता है तो डॉक्टर्स उसको क्या चीज देते हैं, ठीक है ना, उसको वो स्लीपिंग पिल्स देते हैं, राइट, नींद की गोलियां देते हैं। नींद की गोलियां क्यों देते हैं, क्योंकि जब वो सोएगा ना तो उसकी टेंशन जो है वो खुद ब खुद सब्त हो जाएंगी, खुद ब खुद कता हो जाएंगी, ठीक है। और जो इंसान सोता नहीं है, बहुत कम सोता है, ठीक है, तो उसकी फिक्रें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, बहुत ज्यादा उसको परेशान करती हैं, ठीक है। इस वजह से नींद जो है बहुत बड़ी नेमत है इंसान को, जिसको ये नींद मिली होती है नींद की नेमत, तो वो तो धूप की गर्मी में गर्म पत्थरों के ऊपर लेट करके भी सो जाता है, और जिससे अल्लाह ताला इस नेमत को छीन लेते हैं वो नरम मुलायम गद्दों में, एयर कंडीशन कमरों में, बिस्तर के ऊपर करवटे बदल रहा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। तो ये नेमत है ना अल्लाह ताला की, जिसको चाहे देते हैं, जिससे चाहे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सोने की नेमत मिली हुई है ना, तो इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, सुबह उठ करके ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। नींद बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ ताला ने इंसान को जोड़े जोड़े बनाने का जिक्र फरमाने के बाद इसकी राहत के सब सामानों में से खास तौर पर नींद का जिक्र फरमाया। और कीजिए तो एक ऐसी अजीम शान नेमत है कि इंसान की सारी राहतों का मदार यही है, यानी सारी राहतें इसी के गिर्द घूमती हैं। और इस नेमत को ताला ने पूरी मखलूक के लिए आम ऐसा फरमा दिया है कि अमीर गरीब, आलिम जाहिल, बादशाह मजदूर, सबको ये दौलत यकसा बैक वक्त अता होती है। ऐसा नहीं है कि बादशाह उसको नींद नहीं आती, आती तो है उसको, ठीक है ना। तो परेशानी तो अगर गरीब को भी लग जाए तो उसको भी नींद नहीं आती, परेशानी बादशाह को लग जाए तो उसको भी नींद नहीं आती, ठीक है। तो मसला बादशाह होने का नहीं है, मसला ये है कि अगर परेशानी लग जाए तो फिर नींद की नेमत इंसान से दूर हो जाती है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने उमूमी नेमतों में से बनाया, ठीक है, जो कि हर इंसान के लिए अवेलेबल होती है। बल्कि दुनिया के हालात का तजिया करें तो गरीबों और मेहनत कशों को ये नेमत जैसी हासिल होती है, वो मालदारों और दुनिया के बड़ों को नसीब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, गरीबों के ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, इस वजह से वो कम परेशान होते हैं और अमीर लोग ज्यादा परेशान होते हैं। उनके पास राहत के सामान, राहत का मकान, हवा और सर्दी गर्मी के एतदाल की जगह, नरमी गद्दे तकिए सब कुछ होते हैं जो गरीबों को बहुत कम मिलते हैं, मगर नींद की नेमत इन गद्दों तकियों या कोठी बंगलों की फजा के ताबे नहीं है, वो तो हक ताला की एक नेमत है जो बराह रास्त उसकी तरफ से मिलती है। बाज औकात मुफलिस बेसामान को बगैर किसी बिस्तर तकिए के खुली जमीन पर यह नेमत फरावानी से दे दी जाती है, राइट, और बाज़ औकात साजो सामान वालों को नहीं दी जाती, उनको ख्वाब आवर गोलियां खाकर हासिल होती है, और बाज औकात वो गोलियां भी काम नहीं करती। ठीक है ना, हम जानते हैं कि गोलियां भी जो है ना वो एक अरसे तक काम करती हैं, फिर उनका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स के बारे में आज जाकर लोगों को पता लगा है कि अगर एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाना शुरू हो जाए ना, तो एंटीबायोटिक्स असर करना छोड़ देती है, इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान का खराब हो जाता है या इम्यून बन जाता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। उसी तरह ये ख्वाब आवर गोलियां का भी ये मामला होता है। फिर गौर करो कि इस नेमत को अल्लाह ताला ने जैसा सारी मखलूक इंसान और जानवर के लिए आम फरमाया है और मुफ्त बिला मेहनत सबको दिया है, इससे बड़ी नेमत ये है कि सिर्फ मुफ्त बिला मेहनत ही नहीं बल्कि अपनी रहमत कामिला से इस नेमत को जबरी बना दिया है। जबरी, राइट, इनफोर्स्ड, कि इंसान बाज औकात काम की कसरत से मजबूर होकर चाहता है कि रात भर जागता ही रहे, मगर रहमत हक जल्ला शानहू इस पर जबरन नींद मुसल्लत करके उसको सुला देती है कि दिन भर की थकान दूर हो जाए और उसके कवा यानी उसके जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो मजीद काम के लिए तेज हो जाए। ठीक है ना, आपको सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब नींद का गलबा आता है ना तो फिर तो हर जगह ही नींद आ जाती है, राइट। हत्ता कि एक मुहावरा मशहूर, एक मकूला मशहूर हो गया कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, और हमने देखा कुछ लोगों को सूली पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को चढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को देखा जिधर बैठते हैं हत्ता के कुछ तो खड़े हुए हुए भी सो जाते हैं, ऐसा भी हाल हो जाता है इंसान का। ठीक है, मुराकबे में तो माशाल्लाह हम सभी सोते हैं, लेकिन कुछ तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, और जहां बैठते हैं उधर ही नींद आ जाती है फौरन से। तो ये एक ऐसा मामला हो जाता है कि फिर ये यानी जबरन नेमत है, यानी नेमत जबरी, सुभान अल्लाह, नेमत भी कैसी नेमत है कि अल्लाह ताला दे करके ही छोड़ते हैं। तो इससे फायदा होता है हमें कि जी हम दोबारा से ताजोतम हो जाते हैं। आगे इसी नींद की अजीम नेमत का तकमिला ये बयान फरमाया कि वो जअलना लैला लिबासा, यानी रात को हमने छुपाने की चीज बना दिया। इशारा इस तरफ है, इंसान को फितरतन नींद उस वक्त आती है जब रोशनी ज्यादा ना हो, हर तरफ सुकून हो, शोर शुगब ना हो। ठीक है, तो रात में ही ऐसा मामला होता है कि शोर वगैरह खत्म हो जाता है। अब जैसे इस इंसान ने अपनी फितरत को मस्क किया है ना गुनाह कर करके, उसी तरीके से इंसान ने दुनिया की फितरत को भी मस्क कर दिया है। ठीक है, दुनिया की फितरत क्या है कि भाई जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। ठीक है, लेकिन ये शैतान इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, चाहे वो जिस्मानी क्यों ना हो, वो जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से भी इंसान इंसान को चूकता नहीं है। तो ये जो माशाल्लाह इतनी लाइटों वाला सिस्टम आया है, तो लाइटों वाले सिस्टम को फिर कैसे इस्तेमाल किया बजाय इससे कि उससे जो है वो जरूरत की हद तक उसको रखते, लेकिन उसको उससे आगे बढ़ा दिया और रात में दिन का माहौल पैदा कर दिया। ठीक है ना, अब रात जो है वो कब शुरू होती है हमारी, रात के 1 बजे 2 बजे जब दुकानें बंद होती हैं, मॉल्स बंद होते हैं और लोग जो है वो थक के चूर हो जाते हैं, तब कहीं जा करके कुछ रात का माहौल बनता है, फिर भी स्ट्रीट लाइट जो है वो इतनी चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत को जो है ना मस्क कर देने की एक मिसाल ही है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो रात आराम के लिए बनाई थी और लंबा आराम का टाइम था उसके अंदर, मगरब के वक्त शुरू होता था, इशा पढ़ना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। ठीक है ना, क्योंकि अंधेरा हो चुका भाई, सोने का टाइम है, तो इशा जो है ना ये एक मुजाहिदे की इबादत थी। आज क्या मामला है, इशा मुजाहिदे की इबादत नहीं है, इसलिए कि इशा के वक्त तो हमारा दिन चल रहा होता है, राइट, तो मुजाहिदे की इबादत अब इशा भी नहीं रही जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है ना, तो हमारी मुजाहिदे की इबादत तो तहज्जुद के वक्त शुरू होती है कि जी वो उस वक्त कैसे उठे, उस वक्त कैसे नमाज पढ़े, क्योंकि रात इतनी छोटी हो गई ना। इसी वजह से आप देख लें सबकी सेहतें भी खराब हो रही हैं, फिजिकल सेहत भी खराब हो रही है, रूहानी सेहत भी खराब हो रही है, मेंटल सेहत भी खराब हो रही है। ठीक है ना, ये सारी चीजें डिटीरियोरेट हुई हैं, लेकिन इतनी आम हो चुकी है ये डिटीरियोरेशन इतनी आम हो चुकी है कि एहसास ही नहीं होता कि जी हम कितने डिटीरियोरेट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये एहसास खत्म हो गया है, डिटीरियोरेशन खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। ओके, बात क्लियर है सबको, कोई सवाल है इसके ऊपर तो प्लीज पूछ लिया करें। अच्छा, इंसान को फितरतन उस वक्त नींद आती है जब रोशनी ज्यादा ना हो, हर तरफ सुकून हो, शोर शुगम ना हो, हर ताला ने रात को लिबास यानी ओढ़ने और छुपाने की चीज फरमाकर इशारा कर दिया कि कुदरत ने तुम्हें सिर्फ नींद की कैफियत ही अता नहीं फरमाई बल्कि सारे आलम में ऐसे हालात पैदा कर दिए जो नींद के लिए साजगार हों। اول رات کی تاریکی، دوسرے پورے عالم انسان اور جانور سب پر بیک وقت نیند کا مسلط ہونا کہ جب سبھی سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا، ورنہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہوا کرتے تو کسی کو بھی نیند کے وقت سکون میسر نہ آتا۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی کو سو رہا ہوتا، کوئی کسی کو سو رہا ہوتا، جیسے کہ انفارچونیٹلی اس دور کے اندر یہی معاملہ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پر سو رہا ہوتا ہے، ایک آرڈر کو فالو کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس کی ایکسٹریم سچویشن کسی کو یاد ہے، پچھلی ایک کلاس میں بات ہوئی تھی کہ یہ جو رات والا معاملہ، نیند والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو چینج کرنے والا معاملہ، تو اس کی ایکسٹریم فارم کیا ہوگی؟ کسی کو یاد ہے یا کسی کو ویسے ہی پتہ ہے؟ اس کی ایکسٹریم یعنی سچویشن یا ایکسٹریم حالت کیا ہوگی؟ Anyone remember? جب دن رات بن جائے گی، رات ہوگی ہی نہیں۔ جی ماشاءاللہ، جب رات ہوگی ہی نہیں، پرپیچوئل لائٹ۔ اور اس کے لیے کیا ایک ورڈ استعمال کر رہے ہیں آج کل، کیا کہتے ہیں، مجھے بھی ایکچولی ورڈ یاد نہیں آ رہا، کیا تھے وہ، مونز، ٹوائی لائٹ، چائنا مررز، ہاں چائنا اس میں سب سے آگے ہے، چائنا از ناٹ دی اونلی ون، کیا کہتے ہیں اس کو، مونز کا کیا تھا، حماد صاحب آپ کو یاد، آپ نے وہ لفظ بھی کہا تھا اس کلاس میں، مجھے یاد ہے، کیا تھا، سیلیسٹیل یا سم تھنگ لائک دیٹ، یعنی وہ سیٹلائٹس ہیں، ٹھیک ہے، شاہنا کا چاند تو نہیں، لائٹ ریفلیکٹرز، ہاں یعنی اس کا ٹرم خیر کچھ اور تھی، لیکن وہ بیسیکلی وہ کیا ہوں گے کہ وہ ریفلیکٹنگ سیٹلائٹس ہوں گی جو کہ ارتھ کے ایٹموسفیئر کے اندر ہی ہوں گی، لیکن وہ جو ہے نا وہ سورج کی روشنی جو کہ رات کے وقت دوسری طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، سورج کوئی غروب کو تھوڑی ہو جاتا ہے، ارتھ موو ہو جاتی ہے، ارتھ روٹیٹ کر جاتی ہے، اس وجہ سے جو سورج کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر دن ہو رہا ہوتا ہے، اور جو سورج کے اگینسٹ والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر رات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس رات کو دن بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایسے ریفلیکٹنگ مررز لگا دیں آسمان کے، یعنی اسپیس میں ایسے ریفلیکٹنگ مررز لگا دیں کہ جو کہ دوسری طرف جو سورج ہے نا دنیا کے، وہاں سے سورج کی روشنی کو لے کر کے ریفلیکٹ کرے آپ کے علاقے میں، تو آپ کے علاقے میں بھی دن کا شام ماحول ہو جائے گا۔ اب یہ ریفلیکٹنگ مررز جتنے بڑے ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ یہ لائٹ کا جو کوریج ایریا ہوگا وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر یہ اس آئیڈیا کو سیل یہ کیسے کر رہے ہیں، اس آئیڈیا کو سیل یہ ایسے کر رہے ہیں کہ جب یہ لائٹ ہو جائے گی نا ریفلیکٹنگ مررز کے ذریعے سے، اسپیٹیل مررز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو جو اسٹریٹ لائٹس کے اوپر خرچہ آتا ہے نا وہ خرچہ کم ہو جائے گا، رائٹ، یہ جو ہر اسٹریٹ کے اوپر ہزاروں لاکھوں جو آپ کو بلب جلانے پڑتے ہیں اس بلب کا خرچہ کم ہو جائے گا، سورج کی روشنی تو ویسے ہی فری ہے، پیسے تو نہیں دینے پڑتے، بس اس کو آپ نے ریفلیکٹنگ ریفلیکٹ کرنے کے لیے مررز لگانا ہے زیادہ سے زیادہ، تو مررز ون ٹائم کاسٹ ہے آپ کی بیسکلی، یا زیادہ سے زیادہ اس کی مینٹیننس تھوڑی کرنی پڑے گی مررز کی، ٹھیک ہے، تو یہ والی کاسٹ کم ہو جائے گی۔ دوسرا کیا سیلنگ آئیڈیاز کا کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا کرائم کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی رات کے وقت کرائم ہوتا ہے تو جب روشنی ہو جائے گی تو کرمنلز بھی جو ہے وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تیسرا سیلنگ آئیڈیا ان کا کیا ہے کہ جی ایمرجنسی سچویشنز کے اندر فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی رات میں جو ہے نا وہ ایمرجنسی جب کہیں پہ آگ لگ جائے تو رات میں جو ہے وہ آگ کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، یا کوئی اور ڈیزاسٹر آ جائے تو رات کے وقت جو ہے تو اس ڈیزاسٹر میں ریلیف ورک جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر اس قسم کے ریفلیکٹنگ لائٹس ہوں گی تو پھر آپ ڈیزاسٹر ریلیف کا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ان کے سیلنگ آئیڈیاز ہیں، بیکاز ہر برائی کے اندر اچھائی کے کوئی نہ کوئی پہلو تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ اس سے جو ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ نظام پورا ہی کا پورا وہ چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایکسٹریم سچویشن ہوگی کب، یہ حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آیا کہ دجال جب آئے گا تو دجال جو ہے وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا، 40 دن رہے گا، رائٹ، ایسے ہی ہے نا، بلکہ مجھے آج ہی شام کو وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کیا تھی، 40 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ 40 دن رہے گا، لیکن اس 40 دنوں کے اندر جو پہلا دن ہوگا نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، 365 دن کے برابر اس کا پہلا دن ہوگا، تو 365 دن تک کا دن अच्छा, अब अगर कोई समझे कि जी 365 दिनों के बराबर एक दिन, तो क्या सूरज जो है वो जब जब तुलू होगा तो उसके बाद 365 दिन तक सूरज ग़ुरूब ही नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जो थोड़ा बहुत भी यानी सोलर सिस्टम को समझते हैं, राइट, वो जानते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया तो रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये सूरज के तुलू और गुरूब होने का मसला नहीं है, बल्कि होगा क्या कि सूरज तुलू भी होगा, सूरज गुरूब भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग मिरर्स ऐसे लगे हुए होंगे कि अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हदीस से दलील क्या है कि अंधेरा का मसला है खाली, सूरज गुरूब और तुलू का मसला नहीं है? हदीस से इसकी क्या दलील है? जी, हदीस से इसकी दलील कैसे मिलती है कि दिन तो चल रहे होंगे, सूरज तुलू भी हो रहा होगा, सूरज गुरूब भी हो रहा होगा, बस रोशनी का मसला होगा कि रोशनी खत्म नहीं होगी। हदीस से इसकी क्या दलील मिलती है, कैसे दलील मिलती है? जी, ईमान वाले, ईमान वालों को जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल सही, क्योंकि सहाबा कराम को सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की थी? नमाजों के औकात की फिक्र थी, राइट। तो सहाबा कराम ने फौरन पूछा कि या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस एक दिन में हम 5 नमाजें पढ़ेंगे या क्या, कैसे करेंगे नमाजें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम नमाजें जो है ना वो औकात का हिसाब लगा करके पढ़ोगे। क्या मतलब? 24 घंटे के अंदर जो है वो तुम्हें 5 नमाजें ही पढ़नी पड़ेंगी, और 365 दिनों में तुम्हें 365 × 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। भाई नमाजों का ताल्लुक किसके साथ होता है? सूरज के साथ होता है, लेकिन आज के दौर में हम नमाजें सूरज को देख के पढ़ते हैं। हम तो ऑलरेडी सूरज के बगैर नमाजें पढ़े होते हैं, क्योंकि अब जो है परपेचुअल कैलेंडर छप चुके हैं कि जी इस वक्त आपका घड़ी, आपकी घड़ी जो होती है, जब ये टाइम बजाती है तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है, जब ये टाइम होता है तो फजर का वक्त शुरू हो जाता है, जब ये टाइम होता है तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जब अंदाजे से नमाज पढ़ी जाएगी, सूरज को देख के नमाज ही पढ़ी जाएगी। तो जब सूरज की रोशनी जो है वो परपेचुअल हो जाएगी तो वैसे ही किसी को तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि सूरज को तो हम पहले ही नहीं देख रहे, ठीक है। तो इससे ये पक्की बात हो गई कि एक्चुअली सूरज के तुलू और गुरूब होने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली सिर्फ रोशनी में आएगी कि रोशनी जो है वो खत्म नहीं होगी, और वो इन्होंने उसका इंतजाम किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो बेसुकूनी हमारे अंदर अभी मौजूद है ना, ये बेसुकूनी उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम हाइट्स को रीच करनी करनी शुरू हो जाएगी बेचैनी, ठीक है, कर लेगी उस वक्त, ठीक है। तो अब ये नींद की गोलियों से काम नहीं चलेगा, खाली कुछ और करना पड़ेगा। इसके बाद इरशाद फरमाया वह जअलना नहारा माशा, कि इंसान की राहत और सुकून के लिए ये भी जरूरी है कि उसको ग़िज़ा वगैरह की जरूरियात मिले, वरना वो नींद मौत हो जाएगी, ठीक है, यानी वरना फिर जो है ना वो मर ही जाएगा अगर उसको ग़िज़ा वगैरह ना मिले। अगर हमा वक्त रात ही रहती और आदमी सोता ही रहता तो ये चीजें कैसे हासिल होती? इनके लिए जद्दोजहद और मेहनत और दौड़ धूप की जरूरत है जो रोशनी में हो सकती है। इसलिए फरमाया कि तुम्हारी राहत को मुकम्मल करने के लिए हमने सिर्फ रात और इसकी तारीकी ही नहीं बनाई, बल्कि एक रोशन दिन भी दिया जिसमें तुम कारोबार करके अपनी मौशी जरूरियात हासिल कर सको। तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ठीक है, कि बाबरकत है अल्लाह ताला की जात जो कि तमाम तख्लीक करने वालों से ज्यादा बेहतर तख्लीक करने वाली है, अच्छी तख्लीक करने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी कोई तख्लीक करता है। अहसनुल खालिकीन का मफहूम ये है कि एक तो खाली अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक है, बहुत खूबसूरत बनाने वाला है, उसकी मखलूक जो है ना वो बदसूरत नहीं होती, वो बेकार नहीं होती। अहसनुल खालिकीन का ये मतलब होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर वो बात भी आ गई कि जो अल्लाह ताला ने जोड़ों जोड़ों का मामला फरमाया था ना कि हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया कि वखलकनाकुम अजवाजा, तो आपको बताया था कि रात और दिन ये भी एक दूसरे के जोड़े हैं, क्योंकि अगर दिन ना होता तो रात का मकसद फौत हो जाता, और अगर रात ना होती तो दिन का मकसद फौत हो जाता, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शौहर और बीवी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या कम से कम करना चाहिए उनको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जोड़ों का असल यही मकसद होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जिक्र फरमाया اچھا آگے فرمائے کہ اس کے بعد انسان کی راحت کے اس سامان کا ذکر ہے جو آسمان سے متعلق ہیں، ان میں سب سے بڑی نفع بخش چیز آفتاب کی روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سن لائٹ جو ہے اس کو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے، اس کا ذکر فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، یعنی ہم نے آفتاب کو ایک روشن بھڑکنے والا چراغ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اگر آفتاب کو بھی اللہ تعالیٰ چاند کے جیسا ریفلیکٹو چراغ بنا دیتے اور وہ جو روشنی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا، وہ جو سٹار ہے نا وہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کا کوئی سٹار ہوتا، اس کی روشنی جو ہے وہ ٹریول کر کے سن تک پہنچتی اور سن جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتا ہمارے تک، تو پھر ہمیں کیا ملتا؟ ہمیں چاند جیسی شاید روشنی تو مل جاتی لیکن ہمیں ہیٹ انرجی نہیں ملتی، ہیٹ انرجی، بیکاز ہیٹ انرجی جو ہوتی ہے وہ تو سورج کے اندر جو فیوز برن ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے، ریفلیکٹنگ لائٹ کے اندر ہیٹ انرجی تو نہیں ہوتی نا، جیسے کہ چاند کی روشنی کے اندر ہیٹ انرجی نہیں ہوتی، چاند کی روشنی میں تو ٹھنڈک ہوتی ہے کیونکہ وہ چاند کے اندر تو کوئی فیول برن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے اس سورج کو وہاج بنا کر کے، اور وہاج کا مطلب ہوتا ہے جلنے والا، بھڑکنے والا، رائٹ؟ پھر آسمان کے نیچے جو چیزیں انسان کی راحت کے لیے پیدا فرمائی ان میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی برسانے والے بادل ہیں، ان کا ذکر فرمایا وانزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا، مؤثرات مؤثراتن کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والا ہو، یعنی اتنا بھرا ہوا ہو کہ بس اب برسا کہ تب برسا، رائٹ؟ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اور جن آیات میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے یا تو ان میں بھی آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہو، جیسے کہ قرآن میں بکثرت لفظ سما اس معنی کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں یہ جو، اچھا ہاں یہ سمیع اللہ صاحب آپ کا ایک سوال بھی تھا، اس کا ماشاءاللہ جواب یہاں پہ مل گیا، اس وقت ذہن میں نہیں آیا ہمارا جواب، کہ قرآن میں بکثرت لفظ سما جو ہے نا وہ آسمان یعنی آسمان دنیا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سورۃ الطارق کے اندر نا وہ سماء ذات الرج، وہ سماء ذات الرج والی جو آیت ہے کہ آسمان لوٹانے والی چیز ہے، تو وہاں پر جو سما کا لفظ استعمال ہوا وہ بس یہ روحانی آسمان نہیں مراد ہے وہاں پر، بلکہ آسمان دنیا یعنی فزیکل جو ایک ایٹموسفیرک لیئرز ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ وہ ایٹموسفیرک لیئرز جو ہوتی ہیں نا وہی پانی کو لوٹاتی ہیں، وہی جو ہے وہ گیسز کو لوٹاتی ہیں، وہی جو ہے ریڈیشن کو لوٹاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر۔ تو یہ ہو گیا کہ قرآن میں بکثرت لفظ سما جو ہے اس معنی کے لیے آیا ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بھی بارش آ سکتی ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ان تمام ثنائے قدرت اور انعامات ربانی کا ذکر فرمانے کے بعد پھر اصل مضمون قیامت کی طرف رجوع ہے، یعنی لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قیامت کی طرف، پانی ویسے تو اوشنز کے اندر ہے، تو کوئی کہے کہ بھئی بادلوں کا کیا سب سے بڑی نعمت ہو گئی، رائٹ؟ جو کہ یہاں پہ ذکر کر کے آیا تو کہہ رہے ہیں کہ جی بادل سب سے بڑی نعمت ہے، پانی برسانے والے، پانی تو سمندروں میں موجود ہوتا ہے، تو بھائی سمندروں میں جو پانی ہوتا ہے تو آپ سمندر میں رہ تو نہیں سکتے نا، انسان تو نہیں رہ سکتے نا سمندر میں، تو سمندر کا پانی آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میکینزم بنایا ہے وہ بادل بنائے ہیں، کہ سمندر سے پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو کر کے اوپر اٹھتا ہے اور بخارات کی شکل میں پھر وہ بادلوں کی فارم اختیار کرتا ہے۔ اب بادل اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے ان کو موو کراتے ہیں اور وہ پہاڑی علاقوں میں جا کر کے برستے ہیں، اتنے دیر کے اندر یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کی فلٹریشن بھی ہو چکی ہوتی ہے، ورنہ سمندر کا پانی انفلٹر تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بادلوں تک اٹھنے کے چکر میں اس کی ساری فلٹریشن ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جب وہ پانی برستا ہے پہاڑوں کے اوپر، جیسے ہمالیاز کے اوپر برستا ہے اور کراکولم کے اوپر برستا ہے اور دوسرے ماؤنٹین رینجز کے اوپر جو برستا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر برف بنتا ہے، پھر سمر کا سیزن آتا ہے، رائٹ؟ اسپرنگ کا سیزن آتا ہے، وہ برف پگھلنی شروع ہوتی ہے، اب وہ جو برف پگھلتی ہے تو دریاؤں کی شکل میں وہ کہاں پہنچتی ہے؟ جہاں انسان رہتے بستے ہیں وہاں پر پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو ہم پہاڑوں پہ رہ بس سکتے ہیں جہاں پر بلو زیرو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، نہ ہم سمندر میں رہ بس سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو ضرورت نہیں ہے پہاڑوں میں جا کے رہنے کی، تم کو ضرورت نہیں ہے سمندروں میں جا کے رہنے کی، تم جدھر رہتے ہو ادھر ہی رہو، میں تم تک پانی پہنچاؤں گا، رائٹ؟ میں تم تک پانی پہنچاؤں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، تم اپنی تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، تم میری عبادت کرتے رہو، تم میری بندگی کا حق ادا کرتے رہو، मैं तुम तक जो तुम्हारे रिस्क के लिए चीजें हैं वो सारी की सारी तुम्हारे घर में पहुंचाऊंगा, ठीक है। और अल्लाह ताला पहुंचा रहे, बस हमें नजर नहीं आ रहा होता तो हमारी आंखों का कसूर है, राइट। पहुंचने के निजाम का कसूर नहीं है, आंखों का कसूर है बस। वह अंजलना मिनल मुसरात मान से जाजा हो गया। अच्छा, इसके बाद फरमाया कि इन यौमुल फसल काना मीकाता, यानी फैसले का दिन जिसे मुराद कयामत है वो एक मुवक्कत और मुतय्यन हद है जिस पर ये दुनिया खत्म हो जाएगी जबकि सूर फूका जाएगा, ठीक है ना। मुवक्कत का मतलब जिसका वक्त मुकर्रर है, और मुतय्यन है यानी जिसकी कि हद मुतय्यन है कि कब के बाद फिर ये कयामत आएगी। हाँ, हद किसी को बताई नहीं अल्लाह ताला ने, लेकिन मुतय्यन तो है ना, अल्लाह ताला के इल्म में है। दूसरी आयात से मालूम होता है कि नफ़खे सूर दो मरतबा होगा, पहले नफ़खे से सारा आलम फना हो जाएगा, दूसरे नफ़खे से फिर जिंदा और कायम हो जाएगा। इस दूसरे नफ़खे के वक्त सारे आलम के अगले पिछले इंसान अपने रब के सामने फौज दर फौज होकर हाजिर होंगे। हजरत अबू दर गफारी रतानान की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग क़यामत के रोज तीन फौजों में तकसीम होंगे। एक फौज उन लोगों की होगी जो पेट भरे हुए लिबास पहने हुए सवारियों पर सवार मैदान हशर में आएंगे, ठीक है। यानी ये कब होगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ना, शुरू में तो सारे के सारे नंगे होंगे, राइट, बेलिबास और बगैर जो है वो जूते चप्पलों के, राइट। फिर उसके बाद अलग अलग करना शुरू किया जाएगा, तो अब इस ग्रोह के लोगों को जो अलग किया जाएगा ना, तो उनको सवारियों पर सवार करा दिया जाएगा, ठीक है ना, उनको अच्छे अच्छे लिबास पहना दिए जाएंगे, फिर ये मैदान हशर में आएंगे, फिर ये या तो उसी जगह वापस आ जाएंगे या ये कि उनके लिए एक अलग मुकाम बना दिया जाएगा कि जी आप असहाबुल यमीन है, आप जो है ना इस तरफ जमा हो जाएं, अगरचे कि वो जगह भी मैदान हशर का ही हिस्सा होगी, ठीक है, तो उस जगह उनको जमा कर दिया जाएगा। दूसरी फौज प्यादा लोगों की होगी जो चलकर मैदान में आएंगे। तीसरी फौज उन लोगों की होगी जिनको चेहरों के बल घसीट कर मैदान हशर में लाया जाएगा, ठीक है। तो या तो उस वक्त तक इनको नाम बाएं हाथ में दे दिया गया और उसके बाद फिर इनको, चूंकि अब तो इनका हाल ये होगा कि ये खड़े ही नहीं रह सकेंगे ना, इतनी टेंशन होगी, इतना उनके ऊपर जो है वो गम और हसरत और मायूसी गालिब होगी कि बंदा खड़ा नहीं रह सकेगा, घसीट करके लाना पड़ेगा फरिश्तों को उनको, राइट। मजहरी यानी तफसीर मजहरी बड़े वायद नसई व हाकिम व बैहते, ठीक है। तो इन हदीस की किताबों के अंदर ये रिवायात मौजूद है। हदीस की बाज रिवायात में अफवाज की तशरीह 10 किस्म के अफवाज से की गई है, और बाज हजरात ने फरमाया कि हाजरीन महशर की बेशुमार जमात अपने अपने आमाल और किरदार के एतबार से होंगी। इन अफवाज में कोई तजाद नहीं है, हो सकते हैं क्या मतलब कि हदीसों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, और ये मुख्तलिफ अल्फाज क्यों इस्तेमाल फरमाए, क्योंकि हदीसें जो हैं ये कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा रहे थे, ठीक है ना। जैसे आजकल होता ना कि जो प्रोफेसर साहब हैं वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा देते हैं, अब जिसके दिल चाहे उसको सुनता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपनी हदीसें किसी कातिब हदीस के सामने बैठ के रिकॉर्ड नहीं करवा रहे होते थे, बल्कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क़यामत के अहवाल बयान करते थे तो लोग सुनते थे, और फिर वो उस बात को अपने जहन में सेव कर लेते थे, फिर आगे जाके लोगों को बताते थे। तो हदीस की रिकॉर्डिंग का सिस्टम तो ऐसे हुआ है, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें फरमाया करते थे ना वो सुनने वाले के हिसाब से फरमाया करते थे, उसको जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी उतनी इंफॉर्मेशन देते थे, जितनी टेक्निकल टर्म्स वो सुनने वाला जो है वो बर्दाश्त कर सकता था उतनी टेक्निकल टर्म्स सुनाते थे, और जितना वो सिंपलिस्टिक इंसान होता था उतना सिंपलिस्टिक अंदाज में बात करते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से ना हदीसें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफुल अल्फाज और मुख्तलिफुल मानी की नजर आती हैं, ठीक है। लेकिन उलमाए कराम जब पूरे मजमूए हदीस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जब दौरे हदीस की क्लास होती है 8वें साल में जाकर के मदारिस के अंदर, पहले दूसरे तीसरे साल में ये सारी हदीस नहीं पढ़ाई जा रही होती, ज़ियादुल सालिहीन में चंद फजाइल वाली हदीसें पढ़ा देते हैं, ज़ियादुत तालिबीन में हिकमत वाली कुछ हदीसें पढ़ा देते हैं, राइट। और असल हदीस की किताबें जो हैं वो तो 8 साल गुजरने के बाद पढ़ाई जाती है, क्योंकि 8 साल गुजरने के बाद इतना इल्म मिल जाता है, इतना अरबी जुबान के ऊपर उबूर हासिल हो जाता है, और इतना उसूल शरिया, उसूल दीन, उसूल तफसीर, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होते हैं कि फिर अब इस पूरे मजमूए हदीस को पढ़ करके आप जो बज़ाहिर तजाद नजर आता है, बज़ाहिर जो है वो आपको यानी कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद जिसको कहते हैं, और ना समझ में आने वाली बातें वो सारी समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उलमा तो फिर इस नजर से देखते हैं ना, हम अगर हदीसों को आप उठाकर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू हो जाए, जरा संजीदगी के साथ पढ़ना शुरू हो जाए ना, आप थोड़े दिन के अंदर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या है भाई, या इधर कुछ लिखा होता है, उधर कुछ लिखा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, उधर जो है वो अजीब गरीब बात हो रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग तो नऊज बिल्ला ऐसे बदबخت होते हैं कि हदीसों को पढ़ के कहते हैं कि कैसी बेशर्मी की बातें हैं इसके अंदर, कैसी बेहयाई की बातें हैं इसके अंदर। ठीक है ना, वो इसलिए कहते हैं कि एक तो उनकी नीयत ही खराब होती है, उनकी जो है वो उठान ही बेशर्मी और बेहयाई के अंदर हुई होती है ना, इस वजह से उनको हदीसों में बेशर्मी नजर आ रही होती है। ठीक है ना, अलमर ओ यकीसो अला नफसी, कि आदमी जो होता है वो हर चीज को अपने ऊपर ही कयास कर रहा होता है, तो उसके अंदर अपने अंदर बेहयाई होती है, तो उसको हदीसों में भी बेहयाई नजर आ रही होती है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह असल में ये बनती है कि ये जो हदीस के लिटरेचर को पढ़ रहे हैं ना, ये गलत तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू रीड दैट। ठीक है ना, आपको पूरा एक बेस बनानी पड़ती है और असातिज़ा की निगरानी में आपको उनको पढ़ना होता है, तब आपको बातें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि कहीं पर 3 अफवाज लिखा हुआ है, कहीं पर 10 अफवाज लिखा हुआ है, कहीं पर जो है कुछ और लिखा हुआ है। तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, कोई तादाद नहीं है इनके अंदर, सबको आप को रिलेट कर सकते हैं, सबको आपस में को रिलेट कर सकते हैं, बस थोड़ी एक्सप्लेनेशन की और थोड़ी इनकी गहराई की जरूरत होती है। सुयरत الجبال فكانت سرابا, सुयरत से मुराद ये है कि पहाड़ जो आज सबात और करार में बतौर मिसाल के पेश किए जाते हैं कि पहाड़ की तरह सख्त है भाई ये तो, ये सब अपनी अपनी जगहों को छोड़कर रेजा रेजा होकर उड़ते फिरने लगेंगे। सराब के मानी के लफ्जी मानी जहाब यानी चले जाने के हैं, जहाबा यजहबू का मतलब होता है चलना। ठीक है, और चले जाना बल्कि जंगल का वो रेत जो दूर से चमकता हुआ पानी की सूरत में नजर आता है, उसको भी सराब इसी बुनियाद पर कहते हैं, इसी बिना पर कहते हैं कि वो करीब पहुंचते ही नजर से जाता रहता है, वो आगे की तरफ मूव होता रहता है, जैसे जैसे आप अप्रोच करते हैं वो और आगे बढ़ता चला जाता है, जिहाब करता रहता है हर वक्त, इसी वजह से उसको सराब कहते हैं। इन जहन्नम कानत मिरसौदा, मिरसौद वो जगह जहां बैठकर किसी की निगरानी या इंतजार किया जाए। जहन्नुम से मुराद इस जगह जसरे जहन्नुम यानी पुल कुले सरात मुराद है। ठीक है, तो जहन्नम कानत मिरसादा का मतलब एक्चुअल जहन्नुम नहीं है, बल्कि जो पुल जहन्नुम तक लेके जाता है, जो ब्रिज कुले सरात जिसको कहते हैं, वो मुराद है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ सवाब देने वाले और अजाब देने वाले दोनों फरिश्ते इंतजार करते होंगे, अहले जहन्नुम को अजाब के फरिश्ते पकड़ लेंगे और अहले जन्नत के साथ सवाब के फरिश्ते उनको उनके मकाम तक पहुंचा देंगे। गोया के उनको जो अहले जन्नत होंगे उनको फरिश्ते जो है ना गाइडेड टूर देंगे कि जी चले आए चले चले, जैसे होता है ना कि कोई सवारी पर बैठा हुआ है तो सवारी के लगाम पकड़ ली और सवारी को लेकर के आगे चलना शुरू हो गया, अब किसी के मजाल नहीं कि आपको रोक सके क्योंकि लगाम पकड़ा वाला बंदा जो है वो तो फरिश्ता है। तो ऐसे जो है ना गाइडेड टूर दिया जाएगा कि चले इधर चले चले सारे के सारे चलते रहे और आगे जाकर के जन्नत के अंदर उतर जाए, और जो ये होंगे यानी जो मुत्तकी नहीं होंगे, जो मुत्तकी नहीं होंगे, मोमिन नहीं, जो मुत्तकी नहीं होंगे, तो उनको फिर वन वे और दिया कर वहां से गिरा दिया जाएगा और नीचे क्या चीज होगी, नीचे जहन्नुम। तो यहाँ पर जसर जहन्नुम मुराद है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जहन्नुम के पुल पर निगरान फरिश्तों की चौकी होगी, जिसके पास जन्नत में जाने का परवाना होगा उसको गुजरने दिया जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उसको रोक लिया जाएगा। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि कोई नहीं है तुम में से सिवाय इसके कि वो उसके ऊपर वारिद हो, यानी उसके ऊपर से गुजरे, किसके ऊपर से, पुले सरात के ऊपर से। कान अला रब्बिका हतमम मक्दिया, ये बात तुम्हारे रब के नजदीक हतमी बात है, तयशुदा बात है, इसका फैसला हो चुका है तुम्हारे रब के पास कि हर शख्स ने गुजरना है उस पुले सरात के ऊपर से। फिर क्या होगा, सुम फिर नुनज्जिल लजीन तकौ, हम निजात दे देंगे, हम बचा लेंगे उन लोगों को जो के मुत्तकी हैं, متقی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونظر الظالمین فیہا جسیہ، اور جو ظالم ہوں گے گناہگار ہوں گے یعنی گناہوں پر اصرار کرنے والے ڈٹے ہوئے لوگ، توبہ نہ کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فیہا جسیہ، وہ اس کے اندر یعنی جہنم میں گر پڑیں گے اوندھے منہ ہو کر کے، گھٹنے ان کے کٹ جائیں گے، کٹے ہوئے گھٹنوں کے ساتھ وہ جہنم کے اندر گر پڑیں گے۔ کون؟ ظالمین۔ للطاغین مآبا، ظاہر یہ ہے کہ للطاغین مآبن کے متعلق ہے، یعنی یہ تھوڑا یہ نحف کی تھوڑی سی بحث آ گئی ہے کہ لام حرف جر ہے، طاغین اس کا مجرور ہے، تو جو جار مجرور ہوتا ہے تو پھر وہ متعلق ہوتا ہے کسی چیز کے، تو وہ مآبن کے متعلق ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ ان جہنم کانت کی دوسری خبر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری بات بتا رہے ہیں، ان جہنما کے بارے میں دوسری بات بتا رہے ہیں، کہ اس طرح معنی دونوں جملوں کے یہ ہو گئے کہ جسر جہنم تو ہر نیک و بد کے لیے انتظار گاہ ہے، سبھی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نیک کو بھی گزرنا ہے اور بد کو بھی گزرنا ہے، اور جہنم یہ طاغین کے لیے مستقر اور ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، جو بغاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ طاغین طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے، ڈرائیوڈ ہے، جس کے معنی ہے سرکشی، اور طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس بنائی ہے نا ان لمٹس کو کراس کر جائے، تو ایسے چیز کو طاغی کہتے ہیں، جو لمٹس کے اندر رہے نا، لمٹس اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے کہ بھائی تمہاری لمٹس یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، یہ تمہاری لمٹس ہیں، تم گناہ کر سکتے ہو، تم گناہ کر سکتے ہو لیکن توبہ بھی ساتھ کرتے رہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہو، نادم بھی ہوتے رہو، شرمندہ بھی ہوتے رہو، ٹھیک ہے، یہ تمہاری لمٹس ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے ود ان دیز لمٹس، نیکی کرنا اور گناہ توبہ کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری لمٹس ہیں۔ اگر تم نے نیکی چھوڑ دی، گناہ کرنا شروع کر دیا اور توبہ نہیں کری، دس مینس یو آر ناؤ ایکسیڈنگ دا لمٹس، اب تم لمٹ کراس کر رہے ہو، جب لمٹ کراس کر جاتے ہو نا تو تم کہلاتے ہو طاغی، پھر تم باغی طاغی کہلانا شروع ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور باغی طاغی کے لیے کیا ہے؟ للطاغین مآبن، جہنم مآبا ہے، ٹھیک ہے، ٹھکانا ہے۔ تو توبہ از اے کانسیپٹ کہ جو کہ ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ ہوتی کیا ہے، بیکاز ایک لفظ سن لینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو توبہ جو ہے نا یہ ایک ایکچولی اس میں کچھ تفصیل ہے جو کہ سمجھنی پڑتی ہے، تو بڑوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، بچوں کی تربیت کے اندر ان کو صرف یہ نہیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور زور آواز سے جو انکل کو سلام کرنا ہے اور ایسے ہاتھ ملانا ہے، صرف یہ نہیں ہے بچوں کی تربیت، بچوں کو توبہ کی بھی تعلیم دینی ہوتی ہے، توبہ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا گناہ کرنا نہیں ہے ہم نے، رائٹ، لیکن اگر ہو گیا توبہ کیے بغیر بیٹھنا نہیں ہے، توبہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں لینا، یہ توبہ کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، توبہ سمجھ میں آئے بچوں کے لیول سے سمجھ میں آنی شروع ہو جائے، ورنہ تو بوڑھے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ توبہ چیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ طاغین سے مراد اس جگہ کفار ہوں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں جو قرآن و سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا، جیسے روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جبھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو فتنہ دجال والا زمانہ ہے نا، اس میں عقیدوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اعمال پر حملہ تو پرانی بات ہو گئی، عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے، اور نہ پوچھنے والی عادت، उलमा के साथ ना अपना ताल्लुक बनाने वाली जो हमारी जो हमारी मजबूरियां बनी हुई है ना, तो इसकी वजह से ना हम अपने अकायद की हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों की अकायद की हिफाजत नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो तागीन है तो इनमें फिर ये बदअकीदा गुमराह मुसलमानों के फिरके भी हैं। ये रवाफिज होना जो है ना, ये खाली इतना मसला नहीं है कि जी हम रवाफिज नहीं है तो जी हमारा तो मामला कोई खराब नहीं है। बहुत सारे अकीदे हैं, खत्म नबूवत वाला अकीदा आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा यानी उस पर है, जिसको कहते हैं ना तोपों के दहाने पर है खत्म नबूवत वाला मसला। बजाय लगता है कि नहीं हम तो कादियानी नहीं है जी, हम तो जो है वो तो ये कादियानी तो इंतहाई बेवकूफी की बात है, हम तो नहीं हो सकते कादियानी। नहीं, खाली ये मसला नहीं है, आप कादियानियों के बारे में अच्छा ओपिनियन रखना शुरू कर दें कि भाई क्या वजह है कि इनको हम मुसलमान नहीं कहते, क्या वजह है कि इनको जो है वो ऐसे ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अकीदे की खराबी हो जाती है, ठीक है। भाई नबी अलैहिस्सलाम को कोई इंसल्ट कर रहा है और आप कह रहे हैं कि जी क्या मसला है इसके साथ, ठीक है ना। अल्लाह ताला के साथ इंसल्ट क्या होती है, अल्लाह ताला की इंसल्ट क्या होती है जी, जरा बताएं ना, अकीदे का इम्तिहान तो नहीं आपसे। अल्लाह ताला की इंसल्ट किस चीज को कहते हैं, जी दर्जे से गिरा देना, नहीं शिर्क करना, ठीक है। शिर्क जो है ये अल्लाह ताला की इंसल्ट है, उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की इंसल्ट किया है। मुख्तलिफ तरीके वैसे हो सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जो इंसल्ट है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम को इंसल्ट करना वो है खत्म नबूवत का इनकार करना, ठीक है। खत्म नबूवत का इनकार करना ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ इंसल्ट है, ठीक है। और उसी तरह फिर कुछ लोग जैसे रवाफिज का मामला है, नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज के साथ बदतमीजी करना, राइट। नबी अलैहिस्सलाम के जो सबसे करीबी दोस्त हैं, जो आप सल्लम के वजीर हैं, आप सल्लम के सबसे बड़े जो अल्लाह ताला ने मददगार बनाए दुनिया के अंदर, उनके साथ दुश्मनी रखना, उनको बुरा भला कहना, ये सब नबी अलैहिस्सलाम के साथ इंसल्ट है। लेकिन खत्म नबूवत बजायर हमें नहीं लगता, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये खत्म नबूवत का इनकार जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की इंसल्ट कैसे हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा खत्म नबूवत के मसले को समझना पड़ता है, ये बगैर समझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या मसला है इसके साथ, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इस दौर के अंदर तो फिर हमें तो गैस चाहिए ना अपने चूल्हों के अंदर, राइट। तो पहले जो है वो गैस खत्म करी जाती है ताकि हम जो है ना वो गैस की सही मानों में कदर पहचान लें। फिर उसके बाद जो है ना जब गैस छोड़ी जाएगी ना, तो फिर हम कहेंगे वाह वाह जी क्या बात है जी, माशाल्लाह क्या जबरदस्त काम किया कि जी गैस आनी शुरू हो गई, राइट। भाई पहले जो गैस थी वो किधर चली गई, ये सब जो है ना तमाशे हो रहे हैं। तो ये तमाशों से हम नहीं बच सकते इस दौर के अंदर, अगर हमारा उलमाए कराम के साथ गहरी नस्बत का ताल्लुक ना हो, हम इन तमाशों से नहीं बच सकेंगे, ठीक है। और इसका नतीजा हमारे ईमान पर पड़ेगा, खाने पीने पे नहीं पड़ेगा आपके नतीजा, ये इसका इफेक्ट आपके खाने पीने पे नहीं पड़ेगा, आपके जो है वो यानी इन इन सड़कों और ये जो ये अमेरिका में बहुत बहुत अच्छे हैं ये सब, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, यहाँ सारी नेमतें मौजूद हैं ये वाली ना। नाइट वाइट कोई नहीं जाती किसी के घर से, कोई किसी के घर से जो है वो गैस नहीं जाती, कोई किसी के घर से पानी नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अकीदा तो जाता है ना, ईमान तो जाता है ना, ठीक है। तो ये असल चीजें नहीं है, असल चीज एक मोमिन के लिए ईमान है, अकीदा है उसका, ठीक है। तो इन चीजों को ना अवामुन नास नहीं समझ सकते, अवामुन नास का काम नहीं है कि वो सारी चीजों को समझे, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इन सारी चीजों को समझ सके। उनको अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज दी है, उन्होंने जो है वो अपने एक जॉब करनी है, अपने कारोबार करना है, अपने जो है घर बार का इंतजाम करना है, ये उनकी अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, उनको यही चीजें समझ में आनी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने बनाई है उलमा से नत्थी होकर के रहना, कूनू मा सादिकीन, नत्थी होकर के रहना, जुड़ करके रहना, ठीक है। अगर जुड़ करके रहोगे तुम्हारा अकीदा बच जाएगा, ठीक है। और अगर तुम जुड़ के नहीं रहोगे तो खाली किताबें तो तुम पढ़ भी नहीं सकते, अगर पढ़ भी रहोगे ना, तुम्हें कहते हैं हमारी कराची की लैंग्वेज में कहते हैं तुम्हें कख समझ में नहीं आएगी बात, तुम्हें कख समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। तो अपने लिए ना इस बात को सबसे ज्यादा लाजमी बना लें इस दौर के अंदर कि ये वाजिबी सा जो हमने ताल्लुक बनाया हुआ है ना कि जी बस टहलते हुए आते हैं और टहलते हुए आगे निकल जाते हैं, राइट, या तो फिर आते ही नहीं है, ठीक है ना। ये काफी नहीं है अकीदा बचाने के लिए अपना और अपनी औलादों का, ठीक है। और अगर अकीदा ना बचा तो फिर लितौगीना मआबा के राइट टारगेट के ऊपर हम भी शामिल हो जाएंगे, हमारी औलादें भी शामिल हो जाएंगी। अल्लाह ताला काश के हमें समझ अता फरमाए। पता नहीं कितनी दफा ये बातें कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो के टहलते हुए मिजाज के हैं ना, वो सब कुछ सुनने के बाद भी टहलते ही रहते हैं। अजीब, समझ में नहीं आती। बस उस सुन करके, बस ये हालात देख करके, बस यही होता है कि बस हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में, हम कुछ कर लें, हम तो नहीं किसी को हिदायत दे सकते। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। लाबिसीन फीहा अहकाबा, लाबिसीन लाबिसुन की जमा है, ठीक है, इसमें फाइल का सीगा है, तो जिसके मानी ठहरने वाले और कयाम करने वाले के हैं। अहकाब हकबा की जमा है, जमाना दराज को हकबा कहा जाता है। इसकी मकदार में अकवाल मुख्तलिफ हैं उलमाए कलाम के कि हकबा से क्या मुराद है, ठीक है। लाबिसीन फीहा अहकाबा का मतलब कि वो रहेंगे इसके अंदर अहकाब, और अहकाब हकब की जमा है, हकब या हकबुन की जमा है या हकबतुन की जमा है, और हकबतुन ये क्या चीज है। तो इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू से इसकी मकदार 80 साल नकल की है, 80 years, ठीक है। यानी हर साल 12 महीने का होता है, हर महीना 30 दिन का होता है, और हर दिन 1,000 साल का है, ठीक है। क़यामत के दिन की बात हो रही है, वो 1,000 साल का एक दिन है। इस तरह तकरीबन 2,88,00,000 साल का एक हितबा बनता है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह ने मकदार हितबा 80 की बजाय 70 साल करार दी, बाकी हिसाब वही है, ठीक है। मगर मुसनदे बज़ार में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफून ये मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से जो लोग गुनाहों की सजा में जहन्नुम में डाले जाएंगे, कोई उस वक्त तक जहन्नुम से नहीं निकलेगा जब तक इसमें चंद अहकाब ना रह ले, और हकबा कुछ ऊपर 80 साल का, और हर साल 360 दिन का है, कमरी एतबार से 360 दिन का है तुम्हारे मौजूदा दिनों के मुताबिक। इस हदीस में अगरचे इस आयत मस्कूरा की तफसीर मस्कूर नहीं है, मगर बहरहाल लफ्ज अहकाब के मानी का बयान है। चंद सहाबा कराम से जो इसमें हर दिन 1,000 साल का मनकूल है, अगर वो भी आनंद सरसम से सुना हुआ है तो रिवायत हदीस में तारुज हुआ। इस तारुज के वक्त किसी एक पर जज्मो यकीन तो नहीं हो सकता, मगर इतनी बात दोनों ही रिवायतों में मुश्तरक है कि हकबा या हकब बहुत ही तवील जमाने का नाम है। इसीलिए बैजावी ने अहकाबन की तफसीर दुहूर मुतताबिया से की है, यानी पे दर पे बहुत से जमाने, यानी एक जमाना खत्म होगा, लंबा जमाना एक खत्म होगा, फिर दूसरा जमाना शुरू हो जाएगा, फिर वो खत्म होगा, फिर तीसरा जमाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मामला है कि जहन्नुम में बंदा एक दफा एंटर हो गया ना, तो एक हकबे से पहले तो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अब वो एक हकबा अगर चलो 1 साल हमारे हिसाब से भी है, तो क्या हम 1 साल जहन्नुम की सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या तैयार हैं हम सब उसके लिए? तबलीगी जमात वाले कह रहे हैं जी सब भाई तैयार हैं जी, इरादा करें जी। तो आज हम आपसे सवाल करते हैं जी, तैयार है जहन्नुम के लिए एक अखबा, बस एक अखबा के लिए? इरादा करें, इरादा करें, इरादा करने में नेकी मिलती है। तैयार है सारे के सारे? नहीं तैयार है ना। इंशाल्लाह हमें से कोई भी नहीं होगा जो एक अखबा के लिए भी तैयार हो, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, हम तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तौबा से क्यों भाग रहे होते हैं? क्यों तौबा से भाग रहे होते हैं? उस करीम परवरदिगार जिसने तौबा के दरवाजों को बंद नहीं किया, जिसने इतना आसान कर दिया है नेकी करना, इतना आसान कर दिया है गुनाहों को छोड़ना और तौबा कर लेना, तो हम बस मुंह मोड़ करके जो है वो बस दुनिया के पीछे और जहन्नुम के पीछे और शैतान के पीछे और शैतान जैसे लोगों के पीछे अपना अपनी जिंदगी जाया करे जा रहे हैं, जिंदगी जाया करे करे चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम तौबा को समझें, सीखें और अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लें, ठीक है, ताकि जहन्नुम की पॉसिबिलिटी ही बंद हो जाए, ठीक है। और ये चीज यकीनन अल्लाह ताला ने आसान फरमाई है, बस इरादा करने की देर है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है पूछना। ठीक है, चले, सलाम वालेकुम।